बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 27 जनवरी, दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कई शहरों में हिंसा हुई। सरकारी मशीनरी बेबस नजर आई। उधर दलितों की भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में है, लेकिन भड़काऊ बयान देकर हिंसा भड़काने के बावजूद राजपूत करणी सेना महफूज क्यों? क्या जातीय संगठनों की हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने में भेदभाव बरत रही है सरकार? आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा का यही है विषय। हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती बम हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि धमाका भीड़भाड़ वाले एक इलाके में विस्फोटकों से भरी एक एम्बुलेंस में हुआ, जिसे पुलिस नाके पर रोका गया था। जिस स्थान पर धमाका हुआ उसके नजदीक गृह मंत्रालय की पुरानी इमारत और कई विदेशी दूतावास हैं। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। धमाके के वक्त तमीम अहमद अपनी दुकान में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया, मैं अपनी दुकान के भीतर बैठा था जब एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका जैसे दहल गया। मेरी दुकान की सारी खिड़कियां टूट गईं। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। ये थे काबुल के तमीम अहमद के शब्द। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शुक्रवार दिन में शुरू हुई हिंसा आज भी जारी है। यहां कई जगहों पर आगजनी हुई है, लूटपाट और पथराव की भी घटनाएं हुई हैं। यहां शुक्रवार को दो गुटों के बीच झड़प हुई थी जिसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा के कारण यहां एक युवक की मौत हो गई है जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। कासगंज पहुंचे समीरात्मज मिश्र बताते हैं।
पूरा कासगंज शहर शुक्रवार से ही छावनी में तब्दील हो चुका था, लेकिन हिंसा शुक्रवार रात को भी हुई और शनिवार को दिन भर जारी रही। कई दुकानों में लूटपाट की गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों में लगी आग को बुझाने के अभी तक प्रयास हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिलहाल तनाव बना हुआ है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है और शहर के भीतर आने वाले सभी रास्तों को लगभग बंद कर दिया गया है।
ये थे कासगंज से समीरात्मज मिश्र के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के उत्तर पूर्व में मौजूद एक नाइटक्लब पर बंदूकधारियों ने हमला किया है जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। फोर्टलेजा अस्पताल के एक प्रवक्ता का कहना है कि इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि रविवार को 3 कारों में भरकर आए बंदूकधारियों ने क्लब में मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमला किस कारण किया गया इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। माली में सेना ने कहा है कि देश के उत्तर में हुए एक हमले में कम से कम 10 सैनिकों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। सेना का कहना है कि शूंपी सैन्य अड्डे पर इस्लामी चरमपंथी समूह ने हमला किया था। हाल के महीनों में माली में इस्लामी चरमपंथी हमले बढ़े हैं। इसी सप्ताह केंद्रीय माली में एक लैंडमाइन के फट जाने से 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। सऊदी अरब के अरबपति राजकुमार अल वलीद बिन तलाल के परिवार का कहना है कि राजकुमार अल वलीद को कैद से छोड़ दिया गया है। बीते साल नवंबर में भ्रष्टाचार रोधी अभियान के तहत उन्हें रियाद के एक बड़े होटल में बंदी बना लिया गया था। बीती रात रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने राजकुमार अल वलीद बिन तलाल का इंटरव्यू प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार राजकुमार का कहना था कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाए गए हैं और वो भ्रष्टाचार रोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे युवराज मोहम्मद बिन सलमान को अपना पूरा समर्थन देते हैं। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक नंगा पर्वत पर चढ़ाई कर रहे दो पर्वतारोही खराब मौसम के कारण वहां फंस गए हैं। पोलैंड के पर्वतारोही टोमिक मैकेविक्स और उनके फ्रांसीसी साथी एलिजाबेथ रेवोल दुनिया के 9वें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर नंगा पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ठंड के कारण टोमिक मैकेविक्स के हाथों में घाव हो गए हैं और उन्हें देखने में भी मुश्किल पेश आ रही है। पर्वतारोहियों के बचाव दस्ते का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द टोमिक मैकेविक्स और एलिजाबेथ रेवोल तक पहुंच पाएंगे। जर्मनी में पुलिस का कहना है कि उत्तरी सीरिया में कुर्दों के खिलाफ चल रहे तुर्की के सैन्य अभियान का विरोध करने के लिए वहां बड़ा प्रदर्शन किया गया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय एक बार फिर से दोहरा देता हूं, दलितों की भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत जेल में हैं, लेकिन भड़काऊ बयान देकर हिंसा भड़काने के बावजूद करणी सेना महफूज क्यों है? क्या जातीय संगठनों की हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने में भेदभाव बरतती है सरकार? हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण और टेलीफोन लाइन पर कुछ ही देर बाद करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, साथ ही आप श्रोता भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। भारत भूषण जी, सबसे पहले आप ही से इस विषय के पर टिप्पणी करने के लिए कहूँगा कि ये दो तरफा चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं, या वाकई ये मुझे लग रहा है या वाकई दिख रहा है?
ये वाकई ऐसा है। चंद्रशेखर आज़ाद 8 महीने से जेल में हैं। रासुका उनके ऊपर तब लगाया गया जब वो जेल में पहले से ही थे, जून से जेल में हैं और नवंबर में रासुका लगाया गया। 23 जनवरी को रासुका की अवधि और बढ़ा दी गई, यानी कि मई 2018 तक वो जेल में ही रहेंगे और हो सकता है उसके बाद भी रासुका की अवधि बढ़ा दी जाए।
हमारे श्रोताओं को बताइए कि मामला क्या था उनके ऊपर।
मामला ये था कि सहारनपुर में कुछ लोग महाराणा प्रताप जयंती मना रहे थे, उसके ऊपर कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद लोगों ने अंबेडकर के नाम पे जुलूस निकाला और तब दो गुटों में झगड़ा हो गया। और
मतलब कुल मिलाकर एक संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और सरकार को लगा कि खतरा है, ये दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए उनको जेल में
जी। और दूसरी तरफ है करणी सेना जो कई समय पर दंगे करती रहती है। आज से 10 साल पहले भी, एक दशक से ज़्यादा उन्होंने उससे पहले भी दंगा किया था कि राजपूतों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस समय भी वसुंधरा राजे की सरकार थी।
दंगे की बजाय अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें, आंदोलन
मान लीजिए। आंदोलन का मतलब होता है कि सब लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन ये तो अपने आप को कहते हैं कि ये खाली राजपूतों के हितों के संरक्षक हैं। उनके नेता लोकेंद्र सिंह कालवी, जिनको कि आप अभी फ़ोन लाइन पे बुलाएंगे, वो जेल में होने के बजाय दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में बैठे हुए हैं, पता नहीं किस राजनेता के अतिथि बनकर। इनको जेल में होना चाहिए था क्योंकि ये भी उपद्रव फैलाते हैं, और उपद्रव फैलाया हमने देखा, यहाँ तक कि एक स्कूल बस पे हरियाणा में हमला हुआ पत्थरों से और बच्चों की जान को खतरे में डाला गया।
कोई बच्चा घायल
नहीं हुआ। ये तो ऊपर वाले की कृपा रही, कुछ हुआ नहीं। उसके भी 2 दिन बाद उनके एक नेता को गिरफ्तार किया गया।
हमारे साथ इस कार्यक्रम में लोकेंद्र सिंह कालवी जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी, और बहुत अभिनंदन। आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरकारें भेदभाव बरतती हैं, पहले भी कई इस तरह की चीज़ें घटी और इस बार भी करणी सेना ने आपके नेतृत्व में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए, एक गुड़गांव में, एक गुरुग्राम में बस बच्चों की जो थी उस पर भी पत्थरबाजी हुई, तो मतलब पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या है, क्यों लोग हिंसा पर उतारू हो गए हैं?
देखिए,
आपने कहा था कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे।
देखिए जी, जो 2 बड़े आरोप मैं पिछले दिन में सुन रहा हूँ
जी,
अच्छा हो उनकी तफ्तीश होती, जांच होती सर्वोच्च स्तर पर, चाहे सीबीआई हो, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो कुछ भी हो, जो भी कुछ होता मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अभी कहता हूँ, ये जो गुड़गांव वाला जो बस का मामला है बच्चों के साथ, श्री राजपूत करणी सेना या उसका पदाधिकारी नहीं था वहां, नहीं तो उन ऐसा दुष्कर्म करने वाले लोगों को जरूर जरूर सबक सिखाते। ये तय है, ऐसा पाप करने वाले लोगों को जरूर सबक सिखाते, ऐसा मैं विश्वास।
लेकिन लोकेंद्र सिंह जी, जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह की बातें, आपके भाषण जो लोगों ने सुने, उसकी वजह से क्या आपको ये नहीं लगता कि जनता उग्र हो चली और जनता ने हिंसा की? इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है?
हिंसा का जिम्मेदार अगर कोई एक व्यक्ति है तो संजय लीला बंसाली है, जिसकी फितरत है इस तरह के विषयों पर रोज विखंडन करना। बाजीराव मस्तानी, रामलीला, और पद्मावत, क्या लगातार कोई भी एक फिल्मकार, कोई भी एक डायरेक्टर की फिल्म में बता दीजिए जो तीन तीन फिल्में लगातार बारंबार इस तरह से विवादित रही हो?
चलिए हम लोकेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा विषय जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ भारत में देखिए कानून का शासन है और भारत में इस तरह के तमाम पहले भी, जैसे दलित आर्मी की अगर आप जिक्र करें तो दलित आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन पर भी इसी तरह के मामले आए। और जो भी ये अगर आपके बारे में ये कहा जा रहा है, चूंकि राज्यों की सरकारों का आश्रय आपके पास है इसलिए सरकार जो है वो करणी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इस तर्क में कितना दम है?
देखिए, राज्य क्यों नहीं कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, क्या गुड़गांव में गिरफ्तार नहीं हुए हैं लोग, क्या नोएडा में नहीं हुए हैं? और लोग वो है जिनका हमसे कोई लेन देना नहीं है।
आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लोकेंद्र सिंह जी कि शायद आपकी ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद आपको शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि आपको भी डर इस बात का है कि आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता
है? मुझे डर नहीं है। अरे नहीं, आप बहुत गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं
जी,
मुझे किसी बात का डर नहीं है। हाँ। मैं कोई गिरफ्तारियों से डरने वाला? मैंने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे गोली, पूरी मजबूती के साथ मैं आप डटे रहिएगा। और इसी चीज को लेकर ही तो मैं ये चाह रहा हूँ, गिरफ्तारी से कौन डरता है? हाँ, मैं तो राम प्रसाद बिस्वाल की बात याद करता हूँ
जी,
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिखना है जोर कितना बाजुए का दिल में।
मैं यहाँ पर लोकेश सिंह जी आपको रोक रहा हूँ, हमारे श्रोता कुछ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और वो श्रोता आपसे अपनी बात रखना चाहेंगे। भारत भूषण जी भी वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, मौजूद हैं जी। एक श्रोता को कृपया हमारा उनसे संपर्क करवा दें। शाकिर बताएं कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा, कौन बोल रहे हैं जी? एक और दूसरे श्रोता टेलीफोन लाइन पर है, नाम बताएं प्लीज।
हरदोई से संदीप कुमार रमन बोल रहे हैं सर।
जी संदीप कुमार रमन जी, अपनी बात रखें।
सर हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब फूलन देवी की इज्जत लूटी गई थी तो इनकी मर्यादा कहाँ चली गई थी?
अच्छा
जी सर, वो भी तो एक महिला थी सर, हिंदुस्तान में महिला महिला पुरुष पुरुष सब बराबर हैं सर, और संविधान के अनुसार सभी को समानता का अधिकार है सर। तो तब तब इनकी मर्यादा और सब वो कहाँ चले गए थे? तब तब उसके लिए विरोध नहीं किया था इन लोगों ने सर, करणी सेना ने? करणी सेना सर अभी याद ही सर, बीजेपी सरकार आई सर।
लोकेंद्र सिंह जी, आप हमारे श्रोता के सवाल सुन रहे होंगे शायद।
देखिए, अब अगर फूलन देवी से अगर पद्मावती मातेश्वरी को अगर कंपेयर किया जाएगा तो मैं मानता हूँ इससे दुर्भाग्यशाली कोई चीज नहीं हो सकती। 16,000 स्त्रियों के साथ में अपने मान सम्मान स्वाभिमान और इस बात को लेकर कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा देखना तो हाथ लगाना तो दूर देख तक न सके, 16,000 स्त्रियां, और जो भी कोई पूछ रहे हैं उनकी जानकारी में दूं कि वो सिर्फ राजपूत नहीं थी, सारी जाति धर्म बिरादरी की स्त्री अपना सर्वस्व न्योछावर, दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। मगर उनको इतना छोटा बनाने की कोशिश की जाएगी, मैं मानता हूँ बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ मैं
जी,
कि उनकी 37वीं पीढ़ी का सदस्य हूँ
जी। भारत भूषण जी कुछ पूछना चाहते
हैं? मैं तो लोकेंद्र जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पद्मिनी जी तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक इमेजिनरी नायिका थी, फूलन देवी तो जीती जागती थी महिला थी, उनका बलात्कार ठाकुरों ने किया, तो आपसे सवाल ये नहीं था कि कंपैरिजन होना चाहिए, आपसे सवाल ये था जब फूलन देवी जी के साथ जोर ज़बरदस्ती की गई तब राजपूतों की इज्जत कहाँ पे थी, राजपूतों का बड़प्पन कहाँ पे था, उस समय आप सामने क्यों नहीं आए?
राजपूतों की इज्जत राजपूतों के पास ही थी, राजपूतों का मान सम्मान मैं नहीं समझता कि इस तरह से कहीं पर घट रहा था। और मैं
बलात्कार से घटता नहीं है क्या राजपूतों का सम्मान?
नहीं, देखिए मैं तो मानता हूँ कि जिस तरह से विश्वास कायम किया गया है इस पद्मावती वाले मामले में, अब उसको आप पद्मावती आपने, मैंने कहा ना कि मैं उनकी 37वीं पीढ़ी का सदस्य हूँ, तो मतलब फिर तो आप मेरे अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहे कि साहब फिर मैं हूं कि नहीं हूं।
नहीं, बात इतिहास के,
आप अगर इतिहास के,
नहीं मुझे लगता है कि हम लोग इतिहास की बात ना करें, और इतिहास हमारा विषय भी नहीं है।
इतिहास ही विषय है, अगर पद्मावती से और मीर से बात कर रहे हैं तो इतिहास ही विषय है जिसके तोड़ मरोड़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन लेकिन एक संदेश जाता है समाज, लेकिन समाज में लोकेन जी, समाज में एक संदेश जाता है, एक भय का माहौल पैदा होता है, डर का माहौल पैदा होता है, जाति वैमनस्यता बढ़ती है। एक श्रोता को ले रहा हूँ, राजस्थान से ही है वो श्रोता, उनको मैं कार्यक्रम में जगह देना चाहता हूँ। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो सर, मैं गांव हाटी जिला बाड़मेर राजस्थान से पदम जयपाल बात कर रहा हूँ।
पदम जयपाल जी, लोकेंद्र सिंह जी आपके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं उनसे?
सर मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर नारी नारी में भेद क्यों? सर फूलन देवी भी जो नारी थी ना।
नहीं, हमने फूलन देवी की बात कर ली, अब आप और कुछ बात करें।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के खिलाफ जो भी जाए उस पर सरकार कार्यवाही करे।
आपको क्या लगता है कि क्या करणी सिन्हा संविधान के खिलाफ काम कर रही है?
हाँ जी जी, बिल्कुल काम कर रही है संविधान के खिलाफ। जो दंगे फसाद हो रहे उनके खिलाफ, जो करणी सिन्हा के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं रहा। उधर चंद्रशेखर जी रासुका के अंदर बंद है।
लोकेन्द्र सिंह जी, एक कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे श्रोता और कह रहे हैं कि देखिए इसी तरह के मामले भीम आर्मी के आए, दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे, अपनी जातियों के उत्थान की बात कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया और आप आज़ाद घूम रहे हैं।
देखिए मुझे कोई गिरफ्तार करना चाहे तो आज़ाद है, मैं कहीं पर भी रुकावट नहीं हूँ, पर मुझे किस बात को लेकर इस स्थिति में वार्ता करने का कारण बन रहा है मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। वहाँ आगे और पीछे अगर ये कंपैरिजन है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण कंपैरिजन है।
मैंने इसीलिए कहा कि इतिहास की बात ना करें, फूलन देवी का मैंने वो हटा दिया मैंने।
हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो सरकारें क्यों नहीं कर रही है ये तो सरकारों से पूछा जाए। पहले तो ये तय किया जाए कि क्या हम जांच अफसर है, क्या हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो तुरंत प्रभाव से हर चीज पर गुड़गावा में जो हुआ मैंने आपका जवाब दिया कि गुड़गावा में अगर करणी सेना का कोई बंदा या राजपूत समाज का बंदा कोई आसपास होता तो इस तरह के पाप करने वालों को सबक जरूर सिखाता।
खैर इस मामले में एक बात बहुत,
अहमदाबाद में मैं खुद लगभग 10 मिनट बाद में उस हादसे के 10 मिनट बाद में मैं पहुंच गया था और वहां पर न तो मुझे कोई पहचान रहा था ना मैं किसी को पहचान रहा था।
इस पूरे प्रकरण में लोकेन्द्र सिंह जी एक बात बहुत अच्छी है, इस पूरे प्रकरण में एक बात अच्छी हुई कि कम से कम माल की हानि तो हुई, जान की हानि नहीं हुई, ये बहुत संतोषजनक बात है। हिंसक प्रदर्शन हुए, वाहन फूके गए, लेकिन कम से कम किसी की जान नहीं गई, ये एक बहुत अच्छी बात है कि माल की हानि हुई, जान की हानि नहीं हुई। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ यहाँ पर मैं।
जो भी नुकसान हुआ
जी, एक श्रोता आ गए हैं, लोकेन्द्र सिंह जी एक श्रोता आ रहे हैं, हाँ उनको जगह दे रहा हूँ। जी नाम बताएं।
हेलो नमस्कार
जी। नमस्कार,
मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश बंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ।
सूर्यवंशी जी बोल रहे हैं जी, अपनी बात रखें
जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी कानून व्यवस्था भी अच्छी रहे और अच्छी है और संविधान के खिलाफ जो जाए उससे तो बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जैसे इनपे हड़ताल वगैरह होता है तो इसको कानून अपने आप रोके तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब देश के लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। जब भी हड़ताल होती हैं, हिंसक प्रदर्शन होते हैं, बस फूके जाते हैं, तो नुकसान तो देखिए सरकार का और आम जनता का होता है लोकेंद्र जी, तो ये तो कोई इलाज नहीं हुआ किसी चीज के विरोध करने का, इलाज ये तो नहीं हुआ।
अरे मैं यही कह रहा हूँ, अगर संवैधानिक तौर पर अगर हम कहीं गलत हैं, क्या संविधान ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया?
बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया क्या? मेरा फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है? कहां कौन सा संविधान ऐसा कहता है कि मेरा विरोध का अधिकार खत्म कर दिया गया है?
लेकिन विरोध करने का तरीका क्या हो भारत भूषण जी?
तरीका तो बाद में, सवाल यह है कि क्या संजय लीला भंसाली को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? किसी फिल्म मेकर को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? केवल लोकेंद्र सिंह जी कालवी को है या इनके लोगों को जो कहते हैं दीपिका पादुकोण की नाक काट देंगे, सिर काट के ले आओ तो 10 करोड़ रुपए दे देंगे? जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माहौल तो इन्होंने खराब किया ना। लोकेंद्र सिंह जी को जेल में होना चाहिए था, बाहर नहीं।
नहीं,
और ये जेल में इसलिए नहीं है, नहीं, मैं बता रहा हूँ,
इस बात से सहमत नहीं हूँ,
इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकारें उनसे डरती हैं। क्योंकि उन्हें राजपूत वोट चाहिए, इसलिए जेल में नहीं है, वरना ये जेल में होते, वेस्टर्न कोर्ट में नहीं होते।
नहीं, ये जातिगत समीकरण और वोट की बातें अलग है, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान जो है इसमें हम लोग शायद सहमत होंगे कि आम जनता का होता है। लोकेन सिंह जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी चाहता हूँ। नुकसान तो देखिए आम जनता का होता है, डर आम जनता में पैदा होता है, बस इस पर आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ मैं आपकी।
जी, जो भी कुछ हुआ है दुखद है, मैं नहीं मानता कि इस तरह का होना चाहिए, पर इस उग्रता में, इस जोश में होश खो देने वाली स्थिति क्यों बनी है? ये अगर बनी है तो उसका एक मात्र कारण है संचय लीला बंसाली की फितरत बाजीराव में करा।
लेकिन क्या
तो रामलीला में करा, पद्मावत में कर रहा है।
हम लोग थोड़ा सा विषय से फिर जा रहे हैं, क्या इस स्थिति को बदला जा सकता था? लोकेन सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत व्यस्तता से समय निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खत्म की। अब सवाल ये है कि भारत भूषण जी, कुल मिलाकर जो एजेंडा सामने आया, ये देश की दलगत राजनीति के लिए ही है?
देखिए, ऐसा है, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लिंक देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू एकता चाहता है, जातिगत एकता चाहता है, इसलिए उनका नारा दिया एक कुआं एक मंदिर एक शमशान, यानी कि दलित में राजपूत में ब्राह्मण में कोई भेदभाव न हो, लोग धर्मांतरण न करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आइडियोलॉजी की डिमांड एक है, पॉलिटिक्स की दूसरी है।
और शायद यही वजह है कि जहां जहां पर बीजेपी के शासन है
जी,
वहां वहां पर सरकारें निष्क्रिय पड़ी रही और उनके सामने सब कुछ होता
रहा। छह राज्य बीजेपी के सब निष्क्रिय पड़े रहे, सब पद्मावत नहीं दिखाना चाहते थे। संविधान की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया फिल्म को,
सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया,
उसके बाद आपको क्या ऐतराज हो सकता है? और जो लोग नाक काटने की सिर काटने की धमकी दे रहे थे, उनको आपने आज तक पकड़ा क्यों नहीं? इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि दलगत राजनीति कास्ट के बेसिस पे चलती है और बीजेपी को उस कास्ट इक्वेशन के साथ चलना है। अपर कास्ट जो है राजपूत है, उनके साथ ट्रेडिशन ही रहे, उनको नाराज नहीं कर सकते। दलितों पे क्यों अत्याचार होता है? चंद्रशेखर आजाद क्यों जेल में है? क्योंकि जब भी दलित संगठित होता है, नया नेतृत्व उसमें उभरता है, दलित सशक्त होते हैं, तो हमेशा ये डर रहता है कि ये बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, उन लोगों के खिलाफ जाएंगे जो ऑप्रेसर हैं, या उन पार्टियों के साथ जाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जैसे वह क्योंकि ऐसी पार्टियां हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी है, या ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला लेंगे जैसे कि गुजरात में हुआ। तो दलितों की लीडरशिप को ख़त्म करना एक आवश्यकता बन जाती है, और अपर कास्ट के लोग जो गुंडागर्दी करते हैं उनको प्रोटेक्शन देना भी एक जरूरत बन जाती है।
आगे कार्यक्रम में हम चर्चा जारी रखेंगे। कार्यक्रम में एक श्रोता को जगह दे रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो
जी सर, नमस्ते जी।
नमस्ते, नाम बताइए प्लीज।
सर जी, मेरा नाम बुधाराम बहादुर, जालौर राजस्थान से बात।
बुधाराम बहादुर जी, जी
सर जी, मेरा पहला सवाल प्रशांत भूषण से है साहब।
जी,
भारत भूषण से।
भारत भूषण जी, सुन रहे हैं आपको।
क्या पहला सवाल यह है, क्या देश में इस समय हुई जातीय हिंसा भारतीय संविधान के तीनों अंगों कार्यपालिका व्यवस्थापिका व न्यायपालिका में असंतुलन को तो नहीं दर्शा रही है? और मेरा जो दूसरा सवाल है कि कुत्सित राजनीति को पनाह देने वाली सरकार देश में जिस प्रकार का माहौल तैयार कर रही है, क्या यह निकट भविष्य में यह समस्या किसी बड़ी समस्या की जड़ साबित नहीं होगी, जिस प्रकार से नक्सलवाद जैसी समस्या है, ये जो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की जो समस्या चल रही है, किसी सरकार विशेष के प्रति जिस प्रकार आए दिन होने वाली जो हिंसाएं हो रही है, क्या इस प्रकार की बड़ी समस्या को पैदा करने में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार सहयोग तो नहीं कर रही है?
भारत भूषण,
बहुत बढ़िया सवाल है दोनों, और दोनों में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।
इनकी जो तीन अंग है ना, शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत जो है,
पृथकीकरण है, पर उसमें असंतुलन की ये बात करें, वो असंतुलन तो सामने नजर आया है ना। न्यायपालिका ने कह दिया कि आप पिक्चर दिखाइए, और कार्यपालिका जो है छह राज्यों की, बीजेपी शासित राज्यों की, वो कह रही नहीं दिखाना चाहते हम, असंतुलन तो हुआ ना। पार्लियामेंट चुपचाप बैठी हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलना नहीं चाहती है, ना कांग्रेस ने बोला है ना बीजेपी ने कुछ बोला है। प्रधानमंत्री दावोस जाके कहते हैं कि शांति चाहते हैं तो भारत आइए, उस समय जबकि उनके राज्य के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई थी गुजरात में पद्मावती के कारण। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये असंतुलन आ गया,
असंतुलन पैदा हो रहा है।
दूसरा ये कह रहे हैं क्या ये बड़ी बड़ी बात बन सकती है, मैं इसको नक्सलाइट मूवमेंट से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो आर्म्ड मूवमेंट है। जो अभी तक दलितों की मूवमेंट्स हुई हैं वो आर्म्ड मूवमेंट्स नहीं है, तो ये कंपैरिजन गलत है। लेकिन जो हमने भीमा कोरेगांव वायलेंस में देखा, जो हमने सहारनपुर में देखा, और जो हम जिस तरह का सौतेला व्यवहार हम दलितों के साथ देख रहे हैं कंपेयर टू करनी सेना, इससे तो मुझे लगता है दलित कंसोलिडेशन होगा। जितना आप दलितों को के ऊपर दमन करेंगे उतने वो सशक्त होंगे, उतने ही वहाँ पे अनेक जिग्नेश मेवाणी और चंद्रशेखर आजाद
मेवाणी,
ये कन्हैया तो खैर दलित नहीं है, मैं तो दलित लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, ये लीडरशिप होगी, दलित कंसोलिडेशन होगा और इससे देश की राजनीति एक नई दिशा लेगी। उस दिशा से हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि अपर कास्ट का समय खत्म हो चुका है, उन्होंने अपनी लीडरशिप उनको मिली गंवा चुके हैं। एक नई लीडरशिप की आवश्यकता है, वो उभरेगी, उससे कुछ अच्छा ही निकलेगा, खराब कुछ नहीं होगा।
एक श्रोता को जगह दे रहा हूँ। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी नमस्कार, नाम बताइए।
जोधाराम जी बाड़मेर से बोल रहा हूँ सर।
जोधाराम जी हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं।
सर मैं ये पहले अभी सुन रहा था तो काली जी बोल रहे थे, तब बोल रहे थे कि सर कि मैं कोई पहचानता नहीं था। सर पहचानने के लिए तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया है, पहले तो दोनों की मिली भगत से अपनी ये पब्लिसिटी पाने के लिए दोनों आपस में मिलजुल के ये रायता फैलाए, आप रायता सुलझ नहीं रहा है तो सर आपस में ये बड़ी बड़ी उपद्रवियां कर रहे हैं। एक नारी जो 14वीं शताब्दी में हुई थी उसकी अपनी वो आन बान शान अपनी बचाने के लिए अब जो वर्तमान की जो नारियां हैं उनकी वो इज्जत फैल कर रहे हैं, जो सर बच्चों पर हमला कर रहे हैं, बच्चे फूंक रहे हैं पब्लिसिटी। सर ये जो कर रहे हैं विद्रोह ये बहुत गलत कर रहे हैं ना सर
जी। एक श्रोता को और यहीं पर मैं जगह देना चाहूंगा। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हाँ जी सर, मैं सुधांशु सिंह उमराव बोल रहा हूँ, रुद्रपुर उत्तराखंड से।
जी सुधांशु जी।
हाँ जी सर, सर मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है सर, और एक जो मूवी आती है इसको लेकर के इतना सारा पूरे देश में बवाल हो रहा है कि हम इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि सर एक मूवी है, ठीक है सर, और जो वास्तविकता में बहुत सारे गैंग रेप होते हैं पूरे देश में, फिर उसमें कुछ नहीं होता है, और एक मूवी को लेकर के इतना बड़ा ये सब प्रॉब्लम सर, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है।
मतलब हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। बवाल तो समस्याओं पर होना चाहिए, आंदोलन समस्याओं पर चलने चाहिए। जैसे कि हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई बलात्कार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहे,
इसलिए नहीं चल रहे हैं कि उससे वोट नहीं मिलते हैं, तो समस्याएं तो खड़ी कर रहे हैं ना। करणी सेना ने क्या किया, समस्या खड़ी की और नेता कौन बन गए, लोकेंद्र सिंह कालवी, जिनको कल तक कोई नहीं जानता था, आज वो
जो हमारे पहले श्रोता कह रहे थे कि पहचान,
बिल्कुल अपनी पहचान के लिए कर रहे हैं, और इनकी पहचान से जो राजपूत कंसोलिडेशन होता है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुपचाप देखती रहती हैं ये तमाशा, और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता है, न्यायपालिका की बेइज्जती होती है, बच्चे खतरे में होते हैं, स्कूल जा नहीं पाते।
ये तो आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई ठीक है, एक राजपूत कम्युनिटी का एक लीडर उभर के सामने आ गया, उसकी पहचान हो गई, लेकिन
ऐसे लोग ऐसे राजपूत अगर लीडर पैदा करेंगे तो इससे अच्छा है कि ना पैदा करें।
नहीं, लेकिन यही स्थिति तो दलित समुदाय के साथ भी है, उसके भी तो नेता इसी तरह से पैदा होते हैं।
अच्छे नेता पैदा हो रहे हैं, जिग्नेश मेवाणी में क्या खराबी है, चंद्रशेखर आजाद में क्या खराबी है, कांशीराम में क्या खराबी थी, यही थी ना कि वो आपके कास्ट ऑर्डर को चैलेंज करते थे, इससे खराब लगता है लोगों को।
नहीं, लेकिन सामाजिक समरसता तो वो भी तोड़ रहे हैं ना।
सामाजिक समरसता जब है ही नहीं शर्मा जी तो टूटेगी क्यों नहीं।
लेकिन एक अच्छा स्वप्निल भविष्य तो यही है ना कि सामाजिक समरसता हो, और चाहे कोई भी सेना हो, चाहे वो भीम आर्मी हो या फिर आपकी कोई और सेना हो, कुल मिलाकर समाज को क्षति पहुंचाने का ही काम करती है, इसलिए ये पक्ष नहीं लिया जा सकता कि दलित सेना अच्छी है।
मैं नहीं कर रहा, ये जब दलितों को अपना हिस्सा मिलेगा, जब उनको अपनी बराबरी मिलेगी, सामाजिक समरसता अपने आप आ जाएगी। इस देश के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक जब अपनी हिस्सेदारी पाएंगे सत्ता में, तब सामाजिक समरसता आएगी। आप चाहें कि ब्राह्मण राजपूत बना रहे पावर में और सामाजिक समरसता आ जाए, ये कभी नहीं होने वाला।
लेकिन इन्हीं आधार पर बाकी जो सेनाओं का गठन हो रहा है उनको जायज भी नहीं ठहराया जा सकता।
मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका नाम
भीम आर्मी को क्या हम जायज ठहरा सकते हैं?
कौन सा वो बंदूक उठाई है, उन्होंने नाम रखा है ना सेना, दलित दलित पैंथर, कोई पैंथर थे क्या, ये तो नाम है। तो आप सेना कहते हैं इसका मतलब नहीं है कि वो बंदूक लेके चल रहे।
लेकिन कुल मिलाकर अशांति, हिंसा जैसे शब्द, या ये कहें कि ये तो हो सकता है ना,
ये पॉलिटिकली न्यूट्रल शब्द नहीं है। शांति तभी होगी जब सबकी बराबरी होगी, सबकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। आप लोगों का दमन करते रहेंगे और सोचें कि वो शांति से आपको सहन करते रहें और वो सामाजिक समरसता है, तो ये तो आपका मुगालता है, और ये समाज इस मुगालते में रहेगा तो भारत का भविष्य कभी सुधरेगा नहीं।
भारत भूषण जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। समाचारों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है फिलहाल, इस कार्यक्रम में इतना ही। सुबह नमस्कार भारत लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को स्टूडियो सहयोगी शाकिर आलम के साथ विदा दें, नमस्कार।